اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الصخلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین، ابو القاسم محمد، اللہم صل علیہ وسلم، وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کو انفسکم و اہلیکم نارن، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، عزاداران حسین، رضوی کالج بامبے کی شب عاشور کی مجلس ہے، بگ نائٹ کا آغاز ہو گیا، مصیبت کی رات ہے اور عظیم غم کی رات ہے۔ تربیت اولاد کی ٹاپک پر مسلسل 8 دن سے آپ سے معروضے کر رہا کہ ہاؤ ٹو اپ گریڈ اپ برنگ اوور چلڈرن۔ جو معروضے میں نے کیے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا کہ اے صاحبان ایمان، یا ایھا الذین آمنوا، صاحبان ایمان، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرو، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی اولاد کو بچا لو، اس لیے کہ تم آج اپنی اولاد کو بچاؤ گے تو یہ تمہارا فیوچر ہے، تمہارا فیوچر برائٹ ہوگا، دنیا کا فیوچر بھی برائٹ ہوگا، آخرت کا فیوچر بھی برائٹ ہوگا۔ اس لیے کہ ہمارا پاس یہ تصور ہے کہ ہماری ایک اور زندگی ہے جو ایٹرنل لائف جو ہماری ہے۔ اسلام ایٹرنل لائف کی بات کرتا، اسلام ہمیشہ کی زندگی کی بات کرتا، اسلام یہ نہیں بولتا کہ بس تمہاری جو زندگی ہے وہ اسی دنیا کی ہے، نہیں، اسلام یہ بولتا کہ آخرت کی بات کرو۔ امام علی کے سرمنس ہے اس پہ، اللہ قرآن میں سورہ رحمان میں پوری تفصیل بتا رہا کہ اگر تم نے ایٹرنل لائف کے لیے اس دنیا میں کچھ کیا تو ہم تم کو یہ عطا کریں گے، یہ عطا کریں گے، اور وعدہ اللہ کا ہے کہ ہم تم کو ساری نعمتیں دیں گے اگر تم اطاعت کے ساتھ اوبیڈینٹ ہو کر اسلام پہ عمل کر کے اگر تم آؤ گے۔ اور یو نو ویری ویل کہ لائف کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کبھی بھی کسی وقت بھی انسان ختم ہو سکتا۔ کل دوپہر میں خواجہ مسجد میں مجلس پڑھ رہا تھا، وہ صاحب مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے مسجد کے اندر بامبے میں، ماتم بھی کیا، میں تو مجلس پڑھ کے نکل گیا، پتہ چلا وہیں پہ کولیپس ہو گئے۔ آج ان کی تدفین بھی ہوئی ہے، کل رات میں ان کی تدفین ہو گئی۔ یہ تو لائف ہے، جب وہ مجلس میں آئے تھے تو یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ میری زندگی کے آخری مجلس ہوں گے۔ ہی واز ریئلی لکی کہ مجلس میں آئے اور وہیں پہ ڈیتھ ہوئی۔ تو یہ سب کے ساتھ ہو سکتا، اس زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، صرف اگر تم امام کی اطاعت کرو گے، اوبیڈینٹ رہو گے، اسلام کی بات سنو گے تو تمہاری ایٹرنل لائف ہمیشہ کی اچھی ہوگی۔ اللہ یہی بول رہا کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لو، تمہاری یہ لائف کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو اگر تم نے بچوں کو دین بتا دیا، بچوں کو اسلام بتایا، بچوں کو مذہب بتایا، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے اس سال ثواب کرے گی۔ ورنہ یو نو ویری ویل کہ کس کے پاس ٹائم ہے بامبے میں کہ وہ جا کر اپنے باپ کی گریو پہ بیٹھ کے کچھ پڑھے یا باپ کو کچھ عمل دے۔ میں آپ کو بتاتا کہ میرے ساتھ خود لندن کا واقعہ ہے، ایک بہت اچھے انسان تھے، بہت بڑے بزنس مین تھے، ان کے 4 بیٹے تھے، ایک آکسفورڈ کا پڑھا ہوا تھا، ایک کیمبرج کا پڑھا ہوا تھا، ایک کولمبیا یونیورسٹی کا پڑھا ہوا تھا، ٹاپ یونیورسٹیز، جو ٹاپ 10 یونیورسٹیز ان دا ورلڈ ہے، وہاں سے انہوں نے تعلیم کو حاصل کیا تھا، بہت اچھے ایجوکیشن لیا، دنیا میں بہت نام کمایا۔ جب باپ زندہ تھا، باپ چلتا تھا بیٹوں کے ساتھ، تو بڑا پراؤڈ فیل کرتا تھا کہ میرے 4، اور حقیقت بھی ہے کہ اتنا اچھا پڑھنے کے بعد ان لوگوں نے باپ کے نام کو روشن کیا۔ اور اس لیے کہ اسلام بھی اسی کو بولتا کہ تم اچھا ایجوکیشن دو، ایجوکیشن زیادہ سے زیادہ ہوگا، زیادہ سے زیادہ علم ہوگا، زیادہ سے زیادہ تم کو نالج ہوگی، جتنا تم پڑھو گے اتنا امام علی تم کو سمجھ میں آئیں گے۔ اس لیے کہ امام علی جہالتوں میں سمجھ میں نہیں آتے، علم کے ساتھ سمجھ میں آتے۔ جتنا پڑھو گے اتنا تم کام بھی کر سکو گے، کمیونٹی کے لیے بھی کام کرو گے، بٹ ایوری تھنگ از فائن، بہترین ایجوکیشن ضرور دو۔ میں بھی اس کو ہمیشہ پروموٹ کرتا کہ اپنی اولاد کو اچھا ایجوکیشن دینا چاہیے، لیکن یہ 4 بیٹے ٹاپ یونیورسٹیز کے پڑھے ہوئے تھے۔ باپ کا انتقال ہوا، باپ کو تدفین کی، 4 بیٹے موجود تھے، बैठे आए तदफीन में शरीक हुए। बाद में उनसे कहा कि बाप की लहत पे 7 मरतबा सूरह इन्ना जलना पढ़ो, 7 टाइम्स, जस्ट रिसाइट 7 टाइम्स सूरह इन्ना जलना फॉर योर फादर। ये सेट सॉरी मौलाना, आप पढ़े, हमको पढ़ना नहीं आता। ये क्या है? नीचे ये यूनिवर्सिटीज की डिग्रीज बेटों के काम नहीं आए। अगर वो 15 मिनट बैठ के अपने बेटों को बता देता तो आज वो नीचे रिग्रेट नहीं करता। अगर औलाद नहीं पढ़ेगी तो क्या दोस्त पढ़ेंगे? फ्रेंड्स कितनी दिन पढ़ेंगे? 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, उसके बाद भूल जाएंगे। जब औलाद भूल जा रही तो बच्चे दोस्त दोस्त पढ़ेंगे आपके? इसीलिए मस्ट है कि एजुकेशन जरूर दो, ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन दो, प्रोफेशनल कोर्सेज में औलाद को लेकर आओ, बट विद रिलीजन, विद मजहब। अगर तुमने सिर्फ दुनिया का एजुकेशन दे दिया तो तुम्हारी औलाद का यह हशर होगा कि एक दफा भी तुम्हारी ग्रेव पे विजिट नहीं करेंगे, एक दफा भी उनके पास, आजकल टाइम किसी के पास नहीं है। अगर औलाद दीनदार होगी तो वह घर में बैठ के सूरह यासीन पढ़ेगी, बाप को सवाब होगा। घर में बैठ के सूरह मुल्क पढ़ेगी, माँ को सवाब होगा। घर में अपने मुसल्ले पे बैठ के अपने बाप के लिए फातिहा पढ़ेगी, माँ बाप को सवाब होगा। इसलिए कि वहाँ जाने के बाद कोई पूछने वाला नहीं है। ऊपर जो दुनिया में ज़िंदगी में तुम्हारी गुजर रही ना, जितने तुम्हारी दुनिया में यहाँ था ज़मीन के ऊपर, तुम्हारा एक बड़ा रोब था, पैसा था, स्टेटस था, सब सब ऊपर है, नीचे नहीं। नीचे विद योर अमाल, अगर अमाल अच्छे होंगे, औलाद को अच्छा बना दिया तो जब तक तुम्हारी औलाद काम करते रहेगी, सिर्फ बेटा नहीं बेटी नहीं, उसका जनरेशन, एक साइकिल चलेगी। जितने लोग उस तुम्हारे लिए काम करेंगे, जितने लोग ज़ियारत पढ़ेंगे, जितने लोग अमले साले करेंगे, तुम्हारे बाप को माँ को सवाब मिलेगा। इसको अंडरस्टैंड करें मैं क्या बोल रहा, 9 दिन से बोल रहा कि हमको चाहिए कि हम अपनी औलाद को दीनदार, कुछ नहीं, इस्लाम कोई चीज़ का डिमांड नहीं कर रहा आपसे, इमाम अली कोई चीज़ का डिमांड नहीं कर रहा, अल्लाह कोई चीज़ का डिमांड नहीं कर रहा। अल्लाह ने कहा मैंने तुमको सब दे दिया, नेमतें दी, औलाद जैसी नेमत तुमको अता की। जिनको औलाद नहीं है उनके माँ बाप से पूछो कि उनकी क्या हालत है, वो पेरेंट्स से पूछो, शादी हो गए 20 साल हो गए बच्चे नहीं हैं, कैसा तड़प के रो रहे वो लोग कि एक बेटा हो जाए, एक बेटा अडॉप्ट कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, आजकल इतनी फैसिलिटीज हो गई, ये कर रहे, लेकिन उनको औलाद नहीं है। अगर औलाद तुमको, जब अल्लाह ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है, इतनी बड़ी नेमत दी है, तो उस नेमत को सही वजह से इस्तेमाल करो ना। एक अमानत है अल्लाह की तुम्हारे पास, अगर दीनदार बना दे। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि बच्चों के साथ बैठो, जस्ट सिट विद योर किड्स, और उनको इंपॉर्टेंस बताते जाओ। अब कल का आशूरा, मैंने कल बोला, सिर्फ रिमाइंड कर रहा कि अपने बच्चों को बताओ कि कल आशूरा क्या है, व्हाट इज आशूरा, हु इज हुसैन, क्या करना है आशूरे में, ये मॉर्निंग डेज है, हमको करना क्या है, बच्चों को मालूम होना ना। अगर माँ बाप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? तो जितना तुम इसको काम करते रहोगे इसमें इतना फायदा है। दोस्तों आज आपको आबिद बिलग्रामी की बात समझ में नहीं आ रही, यू विल रियलाइज टुमारो, कल समझ में आएगी जब आंख बंद होगी कि काश मैं कुछ कर लेता। एक बेटा अगर नौहा पढ़े, मिसाल के तौर पर नौहा खाली, माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ नौहा दीनदार है, मस्जिद में आया, नौहा पढ़ा, उस नौहे का सवाब इसलिए कि माँ ने सिखाया तो माँ को मिलेगा, उसके दर्जात वहाँ बुलंद होंगे, उसको वहाँ पे नेमतें मिलेंगी। अगर कुछ नहीं किया, सिर्फ मैं दुनिया के उसमें रह गया या अपने आप को देखता रहा, तो स्टेज ऐसा आएगा कि आप इसी दुनिया में रह जाएंगे और चले जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। जब औलाद नहीं पूछेगी तो कोई नहीं पूछता। तो बेहतरीन अमल क्या है कि औलाद को दीनदार बनाओ। मैंने कल कई एग्जांपल्स दिए आपको, फरमान अली साहब का एग्जांपल दिया, हाजी नाजी का एग्जांपल दिया कि आज हाजी नाजी, मैंने कहा था आज बोलूंगा, हाजी नाजी आज वो पर्सनालिटी है गुजरात में कि पूरे गुजरात में थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स लोगों को उसने दीन बता दिया, गुजराती में ट्रांसलेशन करके हर चीज, कुरान भी दे दी, मफाती भी दे दी, दुआएं भी दे दी। उस हाजी नाजी के ज़माने में कई पैसे वाले लोग थे, दौलतमंद लोग थे, बड़े बड़े सेठ थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे। आज कहाँ हैं वो लोग? वेयर दे आर? नीचे, मनोखाक के नीचे। उनकी फैमिली नहीं मालूम, वो लोगों के नाम नहीं मालूम। 100 साल से एक आदमी का नाम है पूरे गुजरात में, सिंस लास्ट 100 ईयर्स। को वो ऐसे पीरियड में उस बंदे उठा जबकि लाइट सिस्टम बराबर नहीं है इंडिया में, 100 ईयर्स पहले की बात कर रहा, उठा उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा, गैबत इमाम में उसने इमाम के लिए वो काम किया, वो काम किया कि अगर आप खुद सोचो एक आदमी को भी अगर कुरान पढ़ा दे, उसकी किताब आज इतनी उसकी एवरी ईयर कंटिन्यूस उसके बुक्स प्रिंट हो रहे हाजी ना जी के, जो आदमी भी एक लाइन भी पढ़ेगा उसको सवाब मिलेगा, ऐसा कोई काम करो तो। और आजकल आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे पास टूल्स नहीं है, आप आज का शिया तो बोल ही नहीं सकता, हर के पास मोबाइल है, हर के पास कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर एज है, यहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटी है, लड़कियों को भी है, लड़के की लड़कों को भी है, तो अगर आप बैठ के बच्चों से डिस्कस करें, बात करें, दे कैन डू वंडर्स, वो लोग खुद क्रिएट करेंगे, खुद कंप्यूटर पे काम करेंगे, खुद आईफोन से मैसेजेस करेंगे, आप सोचो कितना फ़ायदा है। और ये प्रोपोगेशन अगर तुम नहीं करोगे शियत का, तो तुम ये मत समझो कि आज हम ही सिर्फ है, पूरी दुनिया में जाके देखोगे लोग कैसे कैसे काम कर रहे हैं। दीनदार औलाद एक ही इस्लाम का डिमांड है, मैं 9 दिन से एक ही बात बोल रहा कि दीनदार औलाद बना लो, औलाद कैसे को इस्लाम बताओ, औलाद को, इसलिए कि दोस्तों आजकल इस्लाम का इमेज इतना ख़राब हो गया, इतना ख़राब इमेज है, तो बच्चों को बताना है कि तुम्हारे पास जो इस्लाम है वो डिफरेंट है, दूसरा इस्लाम डिफरेंट है, बच्चों को बताना ये बात कि हम जो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं वो रियल इस्लाम है, वो पीसफुल इस्लाम है, वो पीस का मैसेज देता, और दूसरा इस्लाम पीस का मैसेज नहीं दे रहा, वो डिफरेंशिएट करना, वो लाइन को डिवाइड करना, लाइन को डिवाइड करके बच्चों से बैठ के बात करके बोलना कि बेटा जो तुम फॉलो कर रहे इसमें टेररिज्म नहीं है, इसमें किसी को मार नहीं सकते, इसमें इवन इवन एंड को नहीं मार सकते, एंड को, एंड की कोई वैल्यू है, चूंटी की कोई वैल्यू है, यूं लेके हम मार दें पैर के नीचे आ जाती है, हमारे इस्लाम में रियल इस्लाम में चूंटी को नहीं मार सकते आप बगैर किसी वजह के, चूंटी जा रही है आपके सामने से, एंड जा रही है, आप यूं करके नहीं मार सकते, यूं हराम है, अगर वो नुकसान पहुंचा रही वो काट रही तो डिफरेंट स्टोरी है, अदरवाइज यू कैन नॉट टच, ये अल्लाह की मखलूक है। तो फिर जो इतना आज इस्लाम का इमेज इतना खराब हो गया, मुसलमानों की क्या हालत होगी कि आप अपने आप को वेस्टर्न कंट्रीज में यू मतलब बोल नहीं सकते कि ये और मुस्लिम, ये है इस्लाम, ये तो रियल इस्लाम नहीं है ना, तो बच्चों को कैसे मालूम होगा, बच्चों के साथ जब तक पेरेंट्स बैठेंगे नहीं, बच्चों के साथ जब तक पेरेंट्स बैठ के बात नहीं करेंगे, उनको रियल इस्लाम मासूमीन की स्टोरीज नहीं सुनाएंगे, मासूमीन के हालात नहीं बताएंगे, तो उनको कैसे मालूम होगा। मैं एक ही रिक्वेस्ट कर रहा पूरे 9 दिन से कि सिट विद योर किड्स, अपने बच्चों के साथ बैठो, स्पेयर करो टाइम, आई नो देर इज नो टाइम, बट स्टिल यू हैव टू स्पेयर योर टाइम, ये तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है, ये तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है, इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट दुनिया में कुछ नहीं है दोस्तों, ये वो एक इन्वेस्टमेंट ऐसा है कि जो यहां पे भी काम आएगा एंड हियर आफ्टर भी काम आएगा, जब दो दो चीजें तुमको फायदे में मिल रही तो इससे ज्यादा क्या चाहिए। अगर मैं नहीं बैठूंगा तो आज देखो हालात क्या हो गए, क्या आप अपने आप को मुसलमान नहीं बोल सकते, आपको बोलेंगे तो आपका चेहरे को देख के बोलते ये लोग टेररिस्ट है, हम टेररिस्ट है, इस्लाम टेररिज्म का मैसेज दे रहा, हम हुसैनी हैं, हम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, हम फॉलोअर ऑफ इमाम हुसैन हैं, इमाम हुसैन ने टेररिस्ट के खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी, इमाम हुसैन ने पीस का मैसेज दिया था, जितना कंप्लीट पीस हुसैन ने पेश किया हर जुल्म को, लेकिन क्या किया इमाम ने, एक चीज बताई कि मेरा लश्कर छोटा है, वेरी स्मॉल आर्मी, और सामने 100,000 की आर्मी है, उस वक्त अगर इमाम हुसैन आगे बढ़कर आशूरे के दिन 10th मुहर्रम 61 हिजरी को दीन को नहीं बचाते तो आज कौन सा इस्लाम रहता आपके पास, आज ये इस्लाम रहता। इमाम ने एक बात बताई है कि अपनी जिंदगी से डिप्लोमेसी को खत्म करो, हक बोलो। मैं यूथ को यही बोल रहा, पूरी दुनिया के यूथ को, सिर्फ हक बोलना है, डिप्लोमेसी को नहीं रखना अपने पास। करबला का मेन मैसेज वही है, टुमारो आशूरे का मेन पैगाम वही है कि हमको किसी को खुश नहीं करना, अल्लाह को खुश करना, अहले बैत को खुश करना, अगर वो खुश हो गए तो दुनिया और आखिरत तुम्हारी है। अब मैं फिर एक तारीख का वाकया बताता कि देखो लोग जिंदा कैसे हैं। जैसे हाजी नाजी 100 साल से जिंदा है, मैं आपको सिर्फ ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स से या 1100 ईयर्स से एक आदमी जिंदा है। 1200 गिनेंगे तो टाइम लगेगा आपको, 1 2 3 4 5। 1200 साल से वो आदमी आज जिंदा है। क्यों जिंदा है? उसने काम किया इस्लाम के लिए, इसलिए कि उसके पेरेंट्स ने कहा था, उनके माँ बाप ने कहा था। 1200 साल मजाक है। 335 हिजरी इस शख्सियत की, इस पर्सनालिटी की डेथ है। 335 हिजरी इनकी विलादत है, इनकी बर्थ है। ये जो कोई मासूम नहीं है, हम जैसे इंसान है। 250 हिजरी 10वें इमाम का जमाना जब पैदा हुए, डेथ हुई 333 या 335 हिजरी में। ऑलमोस्ट 80 ईयर्स जिंदा रहे। बनी अब्बास का पीक का जमाना, पीक का जमाना। माँ ने बचपने से एक ही तालीम दी कि बेटा अगर जिंदा रहना है हमेशा तो कुछ काम करो इस्लाम के लिए। ही सेड हाउ कैन आई डू इट? पेरेंट्स ने कहा बेटा अगर तुम ये चाहते हो कि तुमको सारे रिवॉर्ड अल्लाह की तरफ से मिले, सूरह रहमान वो मुसलसल माँ पढ़ के सुनाती थी। मैं आपसे भी बोल रहा कि सूरह रहमान का ट्रांसलेशन पढ़ो, इंग्लिश में, गुजराती में, उर्दू में, अरबी में मत पढ़ो। अरबी में पढ़ो तो बहुत अच्छा है, लेकिन ट्रांसलेशन पढ़ो और बच्चों को बताओ कि अल्लाह कैसे प्रॉमिस कर रहा। अल्लाह प्रॉमिस कर रहा, कोई और प्रॉमिस नहीं कर रहा। अल्लाह प्रॉमिस क्या कर रहा? अगर मैं तुमको ये दूंगा, ये दूंगा, ये दूंगा, उसके बाद बोलते हैं कौन सी फबे अय्याला है रब्बे कुमत का जबान, किन किन नेमतों से तुम इनकार करो। वो नेमतों का अल्लाह ने सूरह रहमान में डिस्कस किया, और सूरह रहमान एक ऐसा सूरह है कि अगर तुम डेली पढ़ोगे तो तुम्हारे घर के रिस्क के प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। अगर सूरह रहमान कोई लड़की पढ़ती है अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए, तो अल्लाह का करम इतना होता कि उसकी मैरिड लाइफ हैप्पी हो जाती है। कितने भी प्रॉब्लम्स हो, वो पढ़े और पढ़ के उस पानी में फूके और शौहर को पिला दे, देखो कैसा कितना असर होता सूरह रहमान। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सूरह है कुरान का। तो उस सूरह की ये तिलावत करते थे इनके पेरेंट्स, और तिलावत करके बेटे को मोटिवेट कर, इसलिए कि औलाद जब मासूम, ये जो बच्चे हैं ना, इनको मोटिवेट करना पड़ता। जैसे आप एजुकेशन के लिए मोटिवेट करते, जैसे स्कूल के एजुकेशन के लिए आप पढ़ाने के लिए बोलते बेटा पढ़ो पढ़ो, माँ बाप कैसे बैठते एग्जाम से पहले, जब एग्जाम्स आते हैं तो माँ बाप का एग्जाम हो जाता एक महीना पहले, फाइनल एग्जाम से एक महीना पहले हर माँ लेके बैठती है बच्चे को, अब बिठा के पढ़ाती है। जो होमवर्क आता है माँ बाप कराती, कितना सीरियसली रिलीजियसली होमवर्क कराते, कराना भी चाहिए। मैं मना नहीं कर रहा, मैं बता रहा आपको कि दुनिया के लिए हम कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड रुपीज स्पेंड कर रहे हैं ट्यूशन्स के लिए। स्कूल से आके बच्चा ट्यूशन भी जा रहा, क्यों जा? अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा, बहुत अच्छा है। तुम इतना पैसा स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन तुमने कभी भी ये सोचा कि ये मेरा बच्चे को मैं कुछ दीन भी बताऊं? खाली ये चीज़ तो मस्त नहीं है ना। मैं ये थोड़ी बोल रहा कि आपको एक घंटा दो, आई एम नॉट टेलिंग यू, इस्लाम भी नहीं बोल रहा। मैं एक घंटा नहीं मांग रहा आपसे, मैं आपके 24 आवर्स में 15 मिनट मांग रहा। आई एम जस्ट आस्किंग 15 मिनट्स, 15 मिनट दे दो, मेरी बात पे अमल करो 15 मिनट। अगर माँ 15 मिनट बैठ जाए तो उसके लिए इतनी बड़ी नेमत है, उसको इतना फायदा है कि वो सोच नहीं से। मरने के बाद जब बेटा अमल करेगा या बेटी अमल करेगी तो माँ बाप बोलेंगे उस वक्त वहां पे, काश हम पूरी जिंदगी डिवोट कर देते बच्चों के लिए, पूरी जिंदगी डिवोट कर देते, हमने जिस 15 मिनट डिवोट किया। तो इसके माँ ने क्या किया, अब सोच, अब सुनो किस्सा। 250 हिजरी इनकी बर्थ है बगदाद में, एंड ही डाइड इन 335 हिजरी, बगदाद ही में इंतकाल हुआ। अल्लाह ने रिवॉर्ड क्या दिया वो देखना आज। और उसने, माँ ने इतना मोटिवेट किया बचपने से, अच्छा दुनियावी लिहाज से भी एजुकेशन था उस जमाने का, जो भी एजुकेशन था। और आप ये सोचो कि किस जमाने में एजुकेशन मिल रहा है इनको, कि वो पीरियड में कि जिस पीरियड में कोई कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है बच्चों को, तो समर इराक का समर, इराक का विंटर, कोई ऐसी फैसिलिटीज नहीं है, ना कार है ना गाड़ी है, कुछ नहीं, या पैदल जाना या किसी जानवर पे जाना, या कोई लाइट सिस्टम नहीं है। रात में आके कैसे पढ़ेंगे, अंधेरा हो जाए तो कैंडल रखी हुई है, कैंडल में कितने दिन पढ़ेंगे, बस ये करते रहा करते रहा, माँ ने मोटिवेट किया 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 किया, इस बंदा ना ये बंदा उठा। कब उठा? जैसे ही इमाम की गैबत शुरू हुई। गैबत का ज़माना कब शुरू हुआ? स्मॉलर ओकल्टेशन, स्मॉलर ओकल्टेशन स्टार्ट हुआ 8th रबीउल अव्वल 260 हिजरी। एट दैट टाइम ही वॉज जस्ट 10 ईयर्स ओल्ड, 10 साल के थे बस खाली, जब ये स्मॉलर ओकल्टेशन गैबत सोहरा जिसको बोलते हैं आप, वो शुरू हुआ। और ये पीरियड चला ऑलमोस्ट 69 ईयर्स का, 329 हिजरी तक ये पीरियड चला स्मॉलर ओकल्टेशन का। और स्मॉलर ओकल्टेशन के बाद फिर ये हायर ओकल्टेशन हुआ जिसमें हम जिंदगी गुजारे, गैबत कुबरा। तो ये 69 ईयर्स के पीरियड में यू नो व्हाट ही डिड, इमाम गैबत में चले गए। शियत में किताबें नहीं है, बुक्स नहीं है बराबर, तो ही स्टार्टेड कलेक्टिंग द हदीस ऑफ मासूमीन, हदीस की किताब। हमारे पास एक किताब भी नहीं थी उस वक्त तक, एक, नॉट ए सिंगल बुक, नॉट ए सिंगल बुक हमारे पास शियत के बाद हदीस की बुक नहीं है। आज 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 सबसे ज़्यादा लिटरेचर अगर इस्लामिक लिटरेचर है तो वो हमारे पास है। मैं बड़ा यकीन के साथ बोल रहा, गारंटी उसके साथ बोल रहा, मैं रेस्पॉन्सिबल है व्हाट आई एम सेइंग। अभी 10 दिन बॉम्बे में इंशाल्लाह और हूँ, इसलिए कि 12th मुहर्रम से इंशाल्लाह मैं गुलिस्तान का मेरा अशरा शुरू होगा, गुलिस्तान हिंद का, शाम में 8:30-9 बजे जूहू में। तो अशरा पढ़ के मैं 21st की आखिरी मजलिस उस रात में मैं आई एम गोइंग, तो 10 डेज स्टिल आई एम इन बॉम्बे इंशाल्लाह। मैं एक ऐलान कर दूँ बिफोर आई फॉरगेट के इंशाल्लाह 12th को, 12th ऑफ सेप्टेम्बर डेट इज़ थर्सडे, उस दिन शाम में 5 बजे कब्रस्तान आरामबाग में मुखी फैमिली आपसे उम्मीदवार है, 5 बजे मजलिस है वहाँ पे 12th सितंबर को। और ये मजलिस को मैं ही एड्रेस करूँगा बरज़ख के टॉपिक पे। और 13th फ्राइडे है, फ्राइडे के दिन आफ्टरनून नमाज ज़ुहर के बाद, जुमे की नमाज के इमीडिएटली बाद मुग़ल मस्जिद में मजलिस है, इस मजलिस को भी मैं एड्रेस करूँगा। और 15th को चलो जवारों का जो काफिला जा रहा सिलवासा, मौला हुसैन की ज्यारत के लिए बाहर टेबल भी है, जिसको भी जाना है आप लोग उनसे कांटेक्ट कर लें। सलवात पढ़ लें मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो 260 हिजरी से स्मॉलर ओकल्टेशन शुरू हुआ, वो खड़े हो गए, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर। ऐसे पीरियड में एक आदमी खड़ा होता है, एक हदीस की बुक नहीं है, आप इमेजिन करो आज कितनी हदीसों की बुक है हमारे पास, कितना आज आपको शियत मालूम कैसे, हमने इमाम का जमाना देखा, इन उलमा ने हमको बताया ना, तो एक हदीस की बुक नहीं थी उसमें, कोई बुक्स नहीं थे हमारे पास, मतलब सॉलिड बुक्स, इनके पास एक हदीस, उनके पास एक हदीस। जब ये थोड़ा सा ग्रोन अप हुए, ही गॉट मैरिड, और ऐसी लड़की से शादी की, मैं तो इनकी वाइफ को भी सैल्यूट करता, इनकी वाइफ ने न्यूली मैरिड कपल बोल सकते आप, 18 इयर्स दोस्तों, 18 साल इमेजिन करो, 18 साल कोई मामूली बात है, 18 साल, 18 साल अपनी लाइफ के डेडिकेट किया एक बुक के लिए, एक बुक के लिए जो 3 वॉल्यूम्स में है, 3 वॉल्यूम्स में है, जस्ट वन बुक उसके लिए इन्होंने 18 साल डेडिकेट किया। ही ट्रैवल्ड डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट सिटीज, उस जमाने की ट्रैवलिंग, आज की ट्रैवलिंग नहीं। मैं सिर्फ मोटिवेशन के लिए यह वाक्या पढ़ा, उसके बाद जो रिवॉर्ड मैं 9 दिन से बोला ना, रिवॉर्ड मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, अब इसका रिवॉर्ड भी देखना कि क्या रिवॉर्ड मिला है इनको। डिफरेंट सिटीज को ट्रैवल करके इन्होंने हदीसों को जमा करना शुरू किया, सेइंग ऑफ प्रॉफिट, सेइंग ऑफ इमाम अली, सेइंग ऑफ इमाम हुसैन, सेइंग ऑफ इमाम हसन, करबला का वाकया, पूरे 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 हदीसों को जमा किया। अकेला आदमी एक एक 1,000 माइल ट्रैवल करते थे, 1,000 मील ट्रैवल करते थे, आज की ट्रैवलिंग नहीं, ये बोल भी नहीं सकते कि मैं शिया हूँ, एक कारवांस में जाते थे, अकेले कोई ट्रैवल नहीं कर सकता उस जमाने में, एक अकेला आदमी ट्रैवल करा, कारवांस में जा रहा, उसको पता चला कि ये बगदाद में रहता, उसको पता चला कि सामेरे में नॉर्थ ऑफ इराक में एक हदीस है, तो ही ट्रैवल ऑल द वे टू नॉर्थ, जाके वहाँ पे उस आदमी से हदीस को लिया, लेके लिखा, लिख के वापस आए, और उसके बाद पता चला यमन में एक है, मिसाल के तौर पे ईरान में किसी के पास है, पूरी इस्लामिक कंट्री को 18 ईयर्स वो पूरा डेडिकेट किया और डिफरेंट डिफरेंट सिटीज को जाके हदीसों को जमा किया. पहली बुक है हमारी, फर्स्ट बुक ऑफ शियाइज्म, और हदीसों को जमा करना शुरू किया. जमा करके और इनकी वाइफ ने पूरा सपोर्ट किया. इनकी वाइफ ने कहा कि आप इस्लाम के लिए, इमाम अली इमाम हुसैन के लिए काम कर रहे हैं, मेरी पूरी मॉरल सपोर्ट है. यू डोंट वरी अबाउट योर चिल्ड्रन, मैं चिल्ड्रन को जो है ना अच्छी तरबियत दूंगी. आप दीन के लिए काम करो, इस्लाम के लिए काम करो, यू जस्ट वर्क. अच्छा, और एक बात बोलूं कि ये कोई मिलियनर नहीं थे. इनके पास ऐसा नहीं कि बहुत मिलियन डॉलर पड़े हुए इनके पास. ये नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, लेकिन एक आदमी ने इनको स्पॉन्सर भी नहीं किया, अपने जेब के पैसे खर्च करके करे. ये बड़ा कमाल है कि अपना ओन मनी ही हैज स्पेंड फॉर इस्लाम. ही हैज स्पेंड. हम एक डॉलर किसी के ऊपर खर्च नहीं करते, हम एक डॉलर किसी को नहीं देते. बोलते हैं कि व्हाई शुड आई गिव, लेकिन इस बंदे ने सिर्फ, अच्छा उसको कोई बोलने वाला नहीं है, इमाम भी नहीं है, इमाम गैबत में, स्मॉलर ओकल्टेशन का जमाना है. स्मॉलर ओकल्टेशन के जमाने में इस बंदे ने जब काम करना शुरू किया तो 18 साल 18 ईयर्स इधर उधर जस्ट ही रैन एवरीवेयर. जमा करके एक सॉलिड बुक को जमा किया, 3 वॉल्यूम्स में है, आज भी मौजूद है. 1200 ईयर से आज वो बुक मौजूद है हदीस की. कोई मुश्तहद, इवन आगा शीस्तानी, अल्लाह सलामत रखे, रहबर मौजम सैयद अली खामेनाई साहब, अल्लाह सलामत रखे, जितने हमारे मर्जा, आज कोई मर्जा मर्जा बनता नहीं जब तक इनकी किताब को रेफर नहीं करता हदीस की. समझ में आ रही बात. 18 साल अपनी जिंदगी के डेडिकेट करके एक बुक लिखा. अब आप, उस बुक का नाम क्या है? उसूल काफी. 3 वॉल्यूम्स में, उसूल काफी, फुरू काफी और रौजतुल काफी, 3 वॉल्यूम्स है. उसूल उसूल है, फुरू फुरू है, रौजतुल काफी जो है वो सारे नरेटर्स जो है जिनसे हदीस उन्होंने जमा की उनकी हिस्ट्री. कितना डिफिकल्ट जमाना कि ये हदीस आई तो किस नरेटर की तरफ से आई, किसकी वजह से आई, किसने सुना, किस, तो उसका पूरा खानदान उस रौजतुल काफी में लिखा. जमा किया उसी के बाद, अब गौर से सुना, गौर से सुना. उसके बाद मुसलमानों के पास उस वक्त तक कोई बुक नहीं थी. मुस्लिम्स के पास, आम मुसलमानों की बात कर रहा मैं, आप समझ गए, आम मुसलमानों के पास कोई हदीस की इतनी बड़ी बुक नहीं थी. तो इनकी जो मशहूर किताब है साय सित्ता, 6 बुक्स है. साय सित्ता इस वक्त इस्लाम की, मुसलमानों की सबसे बड़ी किताब है, बिगेस्ट बुक्स यू कैन, जिसमें सही बुखारी भी है, मुस्लिम भी है, तिर्मिज़ी, सब सब. साय, अब गौर से सुनो प्लीज, साय सित्ता में टोटल हदीसों को जो जमा किया, ये बात का पीरियड है, इनका पीरियड नहीं. और इनको जो लोगों ने ये किताबें लिखी, ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर थे, गवर्नमेंट इनको सपोर्ट कर रही थी, गवर्नमेंट इनको पैसे दे रही थी, गवर्नमेंट इनको स्पॉन्सर कर रही थी. ये अपने पैसों से नहीं गए, गवर्नमेंट ने सेलेक्ट किया था इनको 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 कि तुम जाके किताबें लिखो, एंड द गवर्नमेंट यूज टू पे देम, सॉलिड उनको पैसे मिलते थे. तो उसके बाद ये तमाम मुसलमानों की जो सबसे बड़ी किताब है, जिसमें सही बुखारी भी है, साय सित्ता, ये 6 बुक्स में कितनी हदीसें हैं पता है आपको? 8,300 या 400, 8,500 हदीसें मुसलमानों ने साय सित्ता में जमा किया. और हमारा एक आलिम ऐसे पीरियड में, इनके ऑलरेडी 100 बुक्स दूसरे भी है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वन बुक ओनली, उसूल काफी, एवरीबडी नोज, इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो गया. उस उसूल काफी को, इनका नाम है मोहम्मद इब्ने याकूब इब्ने इसाक कुलैनी, ये कुलैन के रहने वाले थे, मोहम्मद इब्ने इसाक इब्ने याकूब कुलैनी. एक आदमी ने 18 इयर्स में पूरे मुसलमानों ने कितनी हदीसें जमा की? 8,500, 8,500. इस एक आदमी ने 16,199 हदीसों को एक किताब में लिखा. आप समझ लो मेरी बात, कितना बड़ा काम है. अब मैं आपको बताता कि इनको रिवॉर्ड क्या मिला, व्हाट ही गॉट इट फ्रॉम इमाम हुसैन इमाम अली. इनकी डेथ हो गई 335 हिजरी में, 150 इयर्स या 200 इयर्स पहले, 1000 साल के बाद, 1000 इयर्स के बाद बनी अब्बास की हुकूमत तो थी बगदाद में. जो बनी अब्बास का गवर्नर था, ही सेड कि ये शिया लोग काजमैन क्यों जाते हैं, वाई दे गो टू काजमैन. 2 इमाम हैं वहाँ पर, लेकिन इमाम को शहीद हो के 1200-1400 साल हो गए, वहाँ पे क्या है? कुछ भी नहीं, ग्रेव है। वाई दे आर गोइंग? वो कासिमैन को तोड़ दो, इन्हें राम कर दो। दुश्मन है एलिजाबेथ। जब इसने ऐलान किया कि काजिमैन में तो बॉडीज तो है ही नहीं नीचे, वो कह रहा जहन नाखिस में कि क्यों जा रहे ये लोग, जाके क्या मांग रहे, बंद करो, तोड़ो काजिमैन को, जो मासूमिन के रोजों को। वहां पे उसके दरबार में एक शिया तखिये में बैठा हुआ था, एक आलिम थे तखिये में अपने मजहब को छुपाए हुए। उन्होंने कहा कि मेरे सामने मौला का रोजा टूट जाएगा। इन्होंने कहा उस गवर्नर से कि शेख, शियों का ये भी अकीदा, ये भी बिलीव है कि जो इनके उलमा हैं जिन्होंने शियत के लिए काम किया, उनकी बॉडी भी इंटैक्ट रहती, हजार सालों के तो भी बॉडी रहती। उसने कहा ये पॉसिबल ही नहीं है। कैसे इम्पॉसिबल? इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकती। तो कहा इनका एक बहुत बड़ा आलिम इसी बगदाद में है, साउथ बगदाद में, जिसका नाम मोहम्मद इब्ने याकूब इब्ने इसहाक़ कुलैनी है, जिसने उसूल काफ़ी लिखी है। इनका बिलीव ये, उसने ऐसी कहा, इस आलिमदीन ने ऐसी कहा, इसलिए कि आलिमदीन जानता है कि इमाम के लिए काम करोगे तो बॉडी को ज़मीन हाथ नहीं लगाएगी, विच इज़ रियली रियली इम्पॉसिबल। ज़ाहरी तौर पे मेडिकली साइंस के लिहाज से इम्पॉसिबल है कि ज़मीन बॉडी को, बॉडी डिकम्पोज हो जाती। मेरी टॉपिक नहीं है वरना मैं बोलता कि डिकम्पोज, यू नो एवरीबडी नोज कि 10 साल 12 साल 15 साल के बाद दूसरी बॉडी को लाके हम दफन कर देते हैं, ये तो एक साइकिल है, रूटीन चल रहा है। तो इम्पॉसिबल है कि बॉडी इंटैक्ट रहे। अगर बॉडी को इंटैक्ट रखना है तो इफ़ यू वर्क समथिंग फॉर इस्लाम, तुम्हारी बॉडी हमेशा ज़मीन के अंदर रही। और जुमे का गुस्ल भी बहुत काम करता है इसमें, और फजर की नमाज के भी अगर कोई पाबंद है, पाबंद नमाज है, और हर जुमेरात को यासीन पढ़े, सूरह रहमान पढ़े, सूरह मुल्क पढ़े, सूरह बनी इसराइल पढ़े, ये चार सूरह ऐसे कि जिससे भी बॉडी इंटैक्ट रहती। लेकिन सारे अमाल के बाद, सारे वो कंडीशंस के बाद, जो कंडीशंस अप्लाई होते उसके बाद अगर कोई ये करेगा तो उसकी बॉडी को ज़मीन हाथ नहीं लगाती। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ यह है, शर्त यह है कि अबू तुराब का मानने वाला भी हो। क्या बोल रहा है, समझ रहे हैं? अबू तुराब का मानने वाला, ज़मीन का जो बाप है ना, उसका मानने वाला भी हो। किसका? इमाम अली का। फॉलोअर ऑफ इमाम अली हो, ऐसा फॉलो नहीं जो जबान की नोक से, टिप ऑफ द टंग से बोलता, नो, ऐसा फॉलोअर हो कि वो चले तो लोग बोले ये अली वाला जा रहा, बात करें तो मालूम हो रहा कि इसके अखलाक बता रहे कि ये इमाम अली का शिया है, उसका बिहेवियर बता रहा, उसकी सॉफ्ट स्पोकन जो है वो सॉफ्ट स्पोकन बता रहा कि कितनी नरम बात करता जैसा इसका इमाम बात करता था। तो ये कंडीशन एनीहाउ, तो उस आलिमदीन ने उस गवर्नर से कहा बनी अब्बास के, के शियों का बिलीव है कि इनके उलमा की लहद को भी, खबर को भी जमीन हाथ नहीं लगाती। ही सेड इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। उसने कहा चल के देख लो। अब उसका जुमला सुनो, उसमें एक एक जुमले का जिम्मेदार मैं हिस्ट्री के वो बातें बता रहा हूं आपको। सिर्फ ये वाकया मैं इसलिए पढ़ा कि रिवॉर्ड क्या मिलता है इफ यू डू समथिंग फॉर योर किड्स, इफ यू डू समथिंग फॉर योर किड्स, इफ यू सिट विद योर किड्स, क्या रिवॉर्ड मिल रहा है। देखो याकूब कुलैनी, उसने कहा जाके देख लो, ये पूरे लोगों के साथ, अपने ग्रुप के साथ, ये गवर्नर ऑफ बनी अब्बास बगदाद का जो गवर्नर था, पूरे ग्रुप के साथ चला। आज भी साउथ बगदाद में याकूब कुलैनी की ग्रेव है, टोम भी है। उसने ये कहा गवर्नर ने कि अगर मैं जाके देखूंगा, अगर उनकी बॉडी इंटैक्ट है तो मैं उनकी जो छोटी सी ग्रेव है ना, मैं वहां पर टोम बना दूंगा, और अगर नहीं है तो मैं काजमैन आके वो उसको भी चेक खोल के देखूंगा। अब सोचो, और ये जो शिया आलिम था, वो सो कॉन्फिडेंट, सो कॉन्फिडेंट, इसलिए कि ही नोस हमारी किताबों में अगर तुम काम करोगे तो तुम्हारी बॉडी को हाथ नहीं लगाए। आप इसमें ताज्जुब मत करो, मैं कोई स्टोरी नहीं सुना रहा। 1930s में जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी, पहला ज़ाहिर हुसैन, पांच इमामों की ज्यारत करने वाला रसूल का साहबी, बगदाद, आज कहाँ है जाबिर, जाबिर बगदाद में, उस वक्त जाबिर का मज़ार दजला के पास था, रिवर दजला के पास, और पानी आ गया था। इन्होंने ख्वाब में आके हुक्म दिया था कि मेरी बॉडी को निकालो, निकाल के वहाँ पे दफन करो, और एक साहब ये रसूल है। तो लोग हैरत में पड़ गए कि 1200 साल इनके जाबिर का इंतकाल कब हुआ, रसूल का साहबी, अब तक बॉडी कैसे रहेगी। तो पूरी दुनिया से मुसलमान आए, पूरी दुनिया से पूरा, आप देख लो, आप गूगल करो, आपको मिल जाएगा वो जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी का, वो पिक्चर्स भी है थोड़े से, गूगल करोगे तो मिलेगा आपको कि उनको पूरी दुनिया से, इवन जर्मनी से साइंटिस्ट आए आके सिर्फ चेक करने के लिए कि ये जो जमीन है इसमें क्या कोई प्रिजर्वेटिव है जिससे बॉडी को हाथ, वो लोग बॉडी बिल्कुल इंटैक्ट है, आके खोला, खोला तो आप यकीन करेंगे इनकी बॉडी इंटैक्ट थी। फिर वहां से लेकर गए, लेकर जाके आज जान जाबिर का मजार वहां पे दफन किया। ये बड़ी बात है दोस्तों, जो अहले बैत के दर से वाबस्ता हुआ वो बच गया। कोई और बताओ मुझे, मुसलमानों के बड़े बड़े लोग हैं, मैं क्या बोल रहा यार, बड़े बड़े हीरोज हैं मुसलमानों के, बड़े बड़े डेडिकेटेड लोग हैं जिन्होंने काम किया, बनी उमैया में हैं, बनी अब्बास में हैं, मुझे एक का बताओ। मैं 10 दिन हूं बॉम्बे में और स्टिल 10 डेज इंशाल्लाह, एक आदमी का बताओ कोई मुसलमान का कि जो अहले बैत से वाबस्ता नहीं था और उसकी बॉडी रह गई। वहां तो नीचे इंतजार करते कमिन कमिन, क्या बोल रहा हूं मैं, नहीं वो तो नीचे जमीन थुराब इंतजार करती, कम कम आई शो यू। क्यों? जब तुम गुरूर और तकबुर के साथ अपने पैर जमीन के ऊपर रखते हो ना, गुरूर के साथ, पैसे का गुरूर, गाड़ी का गुरूर, घर का गुरूर, अपने हुसन का गुरूर, एक एक पैर रखते हो ना, एक एक स्टेप रखते हो, तो उस वक्त नीचे से जमीन पुकार के बोलती है तुम गुरूर के साथ मेरे सीने पे चल रहे, टुमारो यू आर गोइंग टू कम, देन आई विल शो यू। इमाम अली का शिया कभी गुरूर के साथ जिंदगी नहीं गुजारता, कभी नहीं गुजरा। यहां मौला अली का एक सेन याद आई मुझे, मेरा मौला बोलता, मौला से पूछा गया, आज ही देख रहा था, मौला से पूछा गया कि मौला जन्नत का रास्ते के लिए कितने स्टेप्स चाहिए टू गो टू जन्नत। मौला ने 2 स्टेप बताए बस, कहा गुरूर पे अपना पैर रखो, दूसरा पैर जन्नत में चले जाएंगे। गुरूर रहोगे, बोलना क्या था कि तकब्बुर, गुरूर, ईगो रहेगा तुम कभी जन्नत में नहीं जाओगे। शैतान ने गुरूर, किसी चीज पे गुरूर मत करो, हर वक्त शुक्र अदा करो, बस जस्ट से थैंक यू। तो क्या हुआ फिर, इसने ये आया, आके याकूब खुलेनी की ग्रेव को ओपन किया। जस्ट इमेजिन करें हम, ऑलमोस्ट 1200 ईयर्स के बाद याकूब खुलेनी की ग्रेव को, 1000 ईयर्स के बाद ग्रेव को ओपन किया। ओपन किया तो इनकी बॉडी कफन के साथ मौजूद थी, कफन, कफन भी मैला नहीं हुआ था। और बोलूं, इनके चेहरे पे जो दाढ़ी थी, बियर्ड थी, दाढ़ी को जो गुसल दिया था, उनकी बॉडी को जो वॉश किया था, गुसल की नमी मौजूद थी। और बोलूं, इन्होंने दाढ़ी को खिजाब किया था, डाई किया था, उस वक्त डाइज नहीं होते थे, मेहंदी लगाते थे लोग, तो मेहंदी का रंग नहीं गया था। क्यों? काम किया। याकूब खुलेनी को भी दाढ़ी थी, समझ में आई बात, बगैर दाढ़ी के अली एक्सेप्ट भी नहीं करते। एनीहाउ, तो 12,000 साल के बाद बॉडी इंटैक्ट निकली। क्यों निकली? काम करने का नतीजा, ये रिवॉर्ड है, ये रिवॉर्ड है। तो मैं आपको सिर्फ मोटिवेशन को, ये मैंने वाकया पढ़ा क्या करा, आज हम कुछ करेंगे, आज एक, मैं बोलता एक बेटे को या एक बेटी को दीनदार बना लो, इसका यह मतलब नहीं है चारों को खराब कर दो, मेरा मतलब वो नहीं है, मैं रिक्वेस्ट एक की कर रहा, तुम्हारा इतना फायदा। वरना दोस्तों, अगर तुम दीनदार नहीं बनोगे और तुम इजी लोगे, लाइफ को इजी लोगे, क्या टाइम नहीं है, मौलाना का काम है बोलना, हमको जो करना है करें, करें, डू एनीथिंग, डू एनीथिंग, इसमें फायदा आपका होगा। बच्चा दीनदार नहीं निकलेगा तो आप क्या समझ रहे, आपके घर की आजादारी बाकी रहेगी, आपके घर का आजाखाना बाकी रहेगा, आपके घर का मिंबर बाकी रहेगा? कोई नहीं करता, आज के जमाने में कोई नहीं करता। यू डोंट नो तुम्हारी डॉटर इन लॉ कौन आने वाली है, कौन आने वाली है डॉटर इन लॉ, हम पता है कुछ ही नहीं मालूम है, इसलिए कि हो सकता तुम्हारे मजहब की ना है, कोई और आ जाए, कोई और आ जाए। अगर दीनदार औलाद होगी तो वह नस्ल की हिफाजत करेगी, जनरेशन की बेटा हिफाजत, बेटी हिफाजत करेगी। वरना आप, आज आपका लड़का यहां पढ़ रहा बॉम्बे में, हायर स्टडीज के लिए अमेरिका जाता है, यूरोप जाता है, ऑस्ट्रेलिया जाता है,
अगर वहां पे कोई मिल गई कॉलेज में यूनिवर्सिटी में, ये यहीं पे मिल जाए, यहां कितने केसेस है, वो आके बोलता डैड आई वॉन्ट टू मैरी दिस गर्ल, इसलिए कि उसको पता ही नहीं है इसलिए, वो बोलता कि ठीक है मैं इससे मेरी इससे शादी करना चाहता हूं। मां थोड़ा रोकेगी, बाप थोड़ा रोकेगा, उसका बोलेगा चलो ठीक है, इसलिए कि तुम्हारे माँ बाप तुम डिपेंडेंट हो जाओगे आगे चल के औलाद की, फिर वो अल्लाएगी वो उस लड़की के साथ जनरेशन चलेगा। अगर दीनदार बेटा है दीनदार बेटी है तो कभी लड़की सोचेगी भी नहीं, कभी वो सोच भी नहीं सकती अगर दीनदार होगी कि मैं किसी गैर मजहब में जाऊं, समझ रहे मेरी बात। और अगर तुम नहीं देव बचाओगे दीन बचपने से, इफ यू डोंट सिट विद योर गर्ल, इफ यू डोंट शो कि ये रिलीजन में ये है ये है ये है, वो बड़ी आज छोटी है, मैं तो बाहर बोलता हूं ये बात ओपन होकर बोला, इसलिए कि मेरी मर्जी यूरोप अमेरिका में चल रही, मैं उनको वहां पे भी बोला कि बच्चों से सिर्फ इंग्लिश में बात कर रहे, जस्ट दे टॉकिंग टू इंग्लिश 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 में कर रहे। मैंने कहा यार सुनो, अमेरिका में या लंदन में हर बच्चा घर से बाहर निकलेगा स्कूल जाएगा बेहतरीन इंग्लिश एक्सेंट से बात करेगा, बेहतरीन इंग्लिश में बात करेगा, और घर में भी तुम वही लैंग्वेज में बात कर रहे हो। उसका नतीजा क्या हुआ, छोटे बच्चे हाथ पकड़ के जब तक छोटे तुम मस्जिद में लेके जा रहे, मस्जिद को लेके जा रहे, जब बच्चा 12 साल का हो गया 15 साल का हो गया ही सेड नो आई एम नॉट गोइंग बिकॉज आई कांट अंडरस्टैंड। नतीजा क्या हुआ, इमाम बारगा से दूर हो गए, मस्जिद से दूर हो गए। तुम अपनी इंग्लिश को सही करने बच्चों से इंग्लिश में बात की, तुमको तो इंग्लिश आ गई, बच्चे ने मजहब भूल गया। आकाशिस्तानी बोलते कि अपनी लैंग्वेज को कभी नहीं भूलो, कभी अपनी लैंग्वेज को भूलो मत। मैं दूसरा एग्जांपल दूं, चाइनीज जितने चाइनीज हैं, चाइनीज कम्युनिटी है, फिलिपिनो कम्युनिटी है, जिस ईस्टर्न साइड के लोग हैं, फिलिपिनोज है चाइनीज है, वो लोग कभी भी अपने बच्चों से इंग्लिश में नहीं करते बात, दे स्पीक इन देयर ओन लैंग्वेज। मैं मना नहीं कर रहा कि इंग्लिश में मत बात करो, जरूर करो, बट अपनी लैंग्वेज में भी करो। बाबा अब मैं लंदन में ये बात बोलता हूं, तुम अपनी जबान भूल जाओगे तो तुम्हारा कल्चर चला जाएगा, कल्चर चला जाएगा बाद में। इसलिए कि मैं ऐसे पेरेंट्स को जानता हूं वहां पे कि लिटरली लिटरली रो रहे, क्राइंग 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 कि क्या हो गया, हमारी औलाद कैसी हो गई, तुमने इसको खराब किया। कल्चर, अपने कल्चर को मत भूलो। अगर शीसानी बोलते कि अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करो, कल्चर को प्रोटेक्ट करो, इसलिए कि तुम्हारा फर्ज है। आज आज तुम अपनी लैंग्वेज भूल जाओगे तो तुम्हारा बच्चा ना उर्दू मजलिस में आएगा ना पंजाबी मजलिस में आएगा, वो इंग्लिश मजलिस में जाएगा। हर सेंटर में तो इंग्लिश मजलिस नहीं हो रही, इतने स्पीकर्स नहीं है, इंग्लिश में इतना लिटरेचर नहीं है, तुम क्या करने वाले हो, व्हाट आर यू गोइंग टू डू फॉर योर किड्स। वो बच्चे कहाँ जा रहे, माँ जा रही सेंटर को, सुनो गौर से, माँ बाप जा रहे सेंटर को, ये कहाँ जा रहा, अपने फ्रेंड्स में जा रहा, मुहर्रम में। He said, no, I'm not coming to center. I can't understand. वो जा रहा फ्रेंड्स के पास, मैं एहतियात से बोल रहा बहुत, फ्रेंड्स के पास जा रहा, और माँ जा रही मुहर्रम में इमाम बारगा, माँ जाके दुआ कर रही मौला मेरे बच्चे को सिरात मुस्तकीम पे लो, कैसे लाएंगे बाबा, हाउ ही कम। स्टार्टिंग में तुमने खराब किया, तो मैं यही बोल रहा बॉम्बे में भी, मैं खुदा ना खासा डोंट मिसअंडरस्टैंड कि मैं इंग्लिश को मना कर रहा हूं, नो, मैं तो ये बोलता हूं कि डिफरेंट लैंग्वेजेस को सीखो, फ्रेंच सीखो, जर्मन सीखो, इंग्लिश सीखो, सब करो, इसलिए कि हर लैंग्वेज में तुम हुसैन को प्रोपोगेट कर सकते, समझ में आई बात मेरे। जर्मनी सीखो, फ्रेंच सीखो, इटालियन सीखो, स्पेनिश सीखो, दुनिया की बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस सीखो, इसलिए कि जितनी जबानें सीखोगे उतनी जबानों में तुम हुसैन का जिक्र कर सकते, प्रोपोगेट कर सकते। लेकिन यह मतलब नहीं है कि अपने कल्चर को भूल जाओ। मैं यही बोल रहा बॉम्बे में, जो चीज सोसाइटी की अच्छी है उसको एक्सेप्ट करो, जो चीज खराब है उसको एक्सेप्ट नहीं करो। हमारे सारे मर्जा यही बोलते हैं कि अपनी एथिक्स को, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करो। अगर कल्चर तुम्हारा प्रोटेक्ट हो गया तो ना तुम्हारी औलाद किसी और घर में नहीं जाएगी। दोस्तों बस शबे आशूर एक ही ये दुआ करो कि मौला हमारे कल्चर को, हमारी आजादारी को, हमारे जिक्र हुसैन को हम प्रोटेक्ट करें, हम कोई काम ऐसे करें कि हुसैन कहे कि बेबी अंता उम्मीद तिप्तम। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले।
How can I say? Yeah.
मोमिनीन कुछ ऐलाना सुन ले, कल रोजे आशूर अमाल मौलाना शेख अब्बास इस्माइल साहब कराएंगे इस रिजी कॉलेज में 11 बजे, फॉलोड बाय नमाज ज़ोहरैन जमात के साथ होगी, फिर एक पुरसे की मजलिस होगी, मजलिस भाई मौलाना जाफर अब्बास साहब एट 3 PM, उसके बाद फाखर शिकनी का एहतमाम है। कल शाम गरीबा रिजी कॉलेज में मगरिब की नमाज बाजमात होगी, जमात के फौरन बाद 20 मिनट्स या 30 मिनट्स की मजलिस है, डेट्स ऑल, इमीडिएटली आफ्टर मगरिब प्रेयर। यहाँ पे जमात की नमाज पढ़ें आप, और बहुत बड़ी रात है उस रात में आप, कल शाम गरीबान की मजलिस यहाँ होगी, नमाज की मजलिस के फौरन बाद साइलेंट जुलूस निकलेगा, वीरानी फैमिली आपसे उम्मीदवार है, जो हर साल की तरह ये जुलूस काटर रोड तक जाएगा, फिर वापस है, कैंडल लाइट होगा लेडीज जेंट्स सब के लिए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, और मैं लेडीज से बोल रहा, ये ऐलान लेडीज के लिए है कि जब एहतराम करें, जब इमाम बारगाह में जब मेहंदी फिरे तो उसकी रेस्पेक्ट करें, इसलिए कि ऐसा नहीं कि आप जाके मेहंदी पे गिर जा रहे, तो इस तरह से कोशिश करो, और जो वॉलंटियर्स है उनकी बात सुने, इसलिए कि वॉलंटियर्स जो काम कर रहे हैं वो आपके अच्छे के लिए काम करें। जेंट्स में तो इससे इश्यू नहीं है, लेकिन लेडीज़ में जो लेडीज़ वॉलंटियर्स हैं उनके साथ कॉपरेट करें, इसलिए कि वो लोग वॉलंटियरली काम कर रहे हैं मौला हुसैन के लिए, कि आपको अच्छी फैसिलिटीज़ मिलना, आप अच्छी तरह से बैठ के मजलिस सुनना। तो बहरहाल मेरी एक ही रिक्वेस्ट है मेरी माँ बहनों से कि वॉलंटियर्स की रिस्पेक्ट करें, वॉलंटियर्स की बात सुने, इंशाल्लाह बस आज की आखिरी मजलिस, और कल इंशाल्लाह दिन का प्रोग्राम मैंने आपको बताया, मौला आपकी ये पूरे 9 दिन की ये अशरे की आज़ादारी को कबूल करें इंशाल्लाह। एक बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ो, दूसरी बात मैं बड़ी इनकम्प्लीट टॉपिक छोड़ के जा रहा, 10 दिन के टॉपिक भी नहीं थी, बहरहाल जितनी मैंने रिक्वेस्ट की है आपसे उसे कोशिश करो अमल करने के लिए। कल का दिन बहुत बड़ा दिन है, इससे बड़ा दिन नहीं है, 1 साल के बाद ये रात ये दिन आने वाली है। कल एक रिक्वेस्ट करना, कल मैंने कहा आज फिर उसको रिमाइंड कर रहा कि कल की रात मौला हुसैन की विल पर अमल करना, मौला हुसैन की वसीयत पर अमल करना। आई नो You understand what I mean? कल की रात इमाम हुसैन की विल जो थी, लास्ट वर्ड्स जो थे उस पर अमल करो। आशूरे के दिन दिन भर की थकन, पूरे 10 दिन की टाइडनेस, कल की पूरी आज की रात, कल के पूरे दिन की आपकी थकन होगी, फिर आशूरे की मजलिस करेंगे, शाम गरीबा करेंगे, जुलूस में जाएंगे, जब घर जाना कल, when you go back, तो if you are sleeping at 9:30, 10 बजे सो जा रहे, if you are going to bed at 10 o'clock, 9 o'clock, 9 o'clock जा रहे, तो before you go to bed, just recite नमाज-ए-शब। कल की नमाज-ए-शब is so important कि मौला हुसैन ने असर के वक्त अपनी बहनों से कहा था, बीबी जैनब के माथे को चूम के बोला था कि बहन मुझे नमाज-ए-शब में नहीं भूलना। तो कल मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि कल की नमाज-ए-शब हर लड़की, हर लड़का, हर मर्द, हर औरत पढ़े, जहाँ जहाँ मैसेज मेरा दे सकते थे, इतनी इंपॉर्टेंट है ये कल की नमाज। रेगुलर पढ़ने से रिस्क खुलता, रेगुलर पढ़ने से औलाद होती, रेगुलर पढ़ने से ज़िंदगी में बरकत आती, रेगुलर पढ़ने से उसका चेहरा रोशन होता, रेगुलर पढ़ने से उसकी खबर में रोशनी होती, रेगुलर पढ़ने से उसकी दुआएँ कबूल होती, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन कल की नमाज वेरी इंपॉर्टेंट। कल हर लड़के से बोल रहा हूं, मैं यूथ को बोल रहा कि तुम लोगों को कल नमाज शब पढ़ना है, 3 रकत पढ़ो, लेकिन पढ़ो, अगर 11 रकत नहीं पढ़ सकते, 11 रकत नहीं पढ़ सकते, जस्ट रेसाइड 3 रकत, 2 रकत नमाज शिफा, 1 रकत नमाज वेतर, बस सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। कल का जुलूस के बारे में मुझे अभी बताया गया कि पुलिस ने परमिशन नहीं दिया, तो कल यहाँ से जुलूस शाम गरीबा की मजलिस होगी, मजलिस के बाद जो जुलूस का जैसा हर साल जुलूस होता था उसका उनको परमिशन नहीं मिला, तो फाइन कोई मुश्किल नहीं, मजलिस में आना, मगरिब की फौरन नमाज जमात के साथ,
और उसके बाद शाम कल की रात शाम गरीबा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस 20 मिनट के 20 मिनट्स की मजलिस होगी, हर आदमी आए, हर औरत आए, हर मर्द आए, हर बच्चा आए। 10 दिन के बाद ये मजलिस, और उसके बाद घर जाके व्हेन यू गो टू बेड, बिफोर यू गो टू बेड रिसाइट जस्ट नमाज़े शब। एनी दोस्तों, ये बड़ी मुसीबत की रात का आगाज़ हो गया। थैंक यू वेरी मच कि आप 10 दिन मुसलसल आए। मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया, जो जो मैंने बातें बताई उस पर कई लोगों ने अमल किया, एंड आई होप आई एम वेरी पॉजिटिव। मेरे मौला से मैं दुआ करता कि मौला एक लड़का मेरी पूरी स्पीचेस से पूरे लेक्चर से 10 दिन के अगर एक लड़का या लड़की भी कामयाब हो जाए तो मैं कामयाब हो गया। यार बस मौला आबाद रखे आपको, अपनी औलाद के लिए टेक केयर ऑफ योर किड्स, टेक केयर ऑफ योर किड्स, बस इतना ही बोलता मैं। मेरे लास्ट वर्ड्स, टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रन, टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रन। हुसैनी बना दो बच्चों को, आज़ादार बना दो बच्चों को, फिर देखो कि ब्लेसिंग ऑफ इमाम हुसैन क्या होती है। बड़ी क़यामत की रात का आगाज़ हो गया, शबे आशूर है। ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या हुआ आज की रात, सिर्फ तसव्वुर करके रोना है कि आज आशूर की, आज हुसैन की ज़िंदगी की आखिरी रात है, बिल्कुल लास्ट नाइट। दोस्तों अब जिंदा रहेंगे तो आइंदा साल फिर हम हुसैन को मेहमान करेंगे। हर रोज़ रिज़वी कॉलेज आप एक पर्टिकुलर टाइम पे आते थे, कितनी रौनक थी रिज़वी कॉलेज में। जाके अंदर मिंबर पे देखो, इमाम बारगाह में देखो, कितनी रौनक है, कितने माशाल्लाह अलम मुबारक सजे हुए, झूला रखा हुआ, ताबूत रखा हुआ। कल जब तुम इस वक्त आओगे तो वहाँ क्या हाल होगा? उजड़ जाएगा, अंधेरा होगा, अंधेरा होगा, दिल फट जाएगा ना। कितना इंतज़ार था मुहर्रम का कि मुहर्रम आए, मुहर्रम आए, और जब मुहर्रम का चांद देखा था तो कितनी खुशी थी कि हुसैन हमारे घर मेहमान आ गए। हर घर में मिंबर सज गया, हर घर में अज़ाखाना सजा दिया गया, लेकिन आज हुसैन की ज़िंदगी की आखिरी रात, आज हम इतना तड़प रहे तो आज की रात फातिमा का क्या हाल होगा? आहिस्ता नहीं रोना, आहिस्ता नहीं रोना, तकल्लुफ से नहीं रोना, ये वो रात है। ज़रा कोई ज़ैनब के दिल से पूछे, बीबी ज़ैनब ये रात को एक ही जुमला कह के रो रही थी कि ये रात न ढलना के उजड़ जाएगी ज़ैनब। मौला आबाद रखे, आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई, आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई, बीबी तुम्हारे फुरसे को कबूल करे। दोस्तों एक ही जुमला बीबी बोल बोल के रोती थी कि ये रात न ढलना के उजड़ जाएगी ज़ैनब। लिटरली कल बीबी ज़ैनब उजड़ गई बीबी ज़ैनब। कल फातिमा का घर ऐसा उजड़ा कि अब क़यामत तक ये घर कभी आबाद नहीं होगा। आपको मालूम है आज की रात की रिवायत है ना कि जब मौला हुसैन उस सहाबी को एक एक जगह बता रहे थे कि यहाँ अली अकबर घोड़े से आएगा, यहाँ कासिम पामाल होगा, यहाँ ओनो मोहम्मद की लाशें उठाऊंगा, यहाँ पे अब्बास का एक एक शाने की जगह बताई कि ये वो जगह है जहाँ मेरे अब्बास का पहला शाना खता होगा, ये वो जगह है जहाँ मेरे अब्बास का दूसरा शाना खता होगा, सब बता के मौला एक नशेब में गए और जा उससे कहा तो ऊपर ठहर जा, नीचे गए और नीचे जाके कुछ देर के बाद आए, ये कहता मैं एक बीबी की आवाज़ सुन रहा था नीचे से। जब हुसैन ऊपर आए तो मैंने पूछा मौला ये कौन सी जगह है, तो कहा ये वो जगह है जब मैं घोड़े से ज़मीन पर आऊँगा। तो उसने कहा मौला ये बीबी कौन है जिसकी आवाज़ आ रही थी, कहा ये मेरी माँ फातिमा है। मौला आबाद रखे, मौला तुमको आबाद रखे, मौला तुम्हारे फुरसे को कबूल करे। कहा ये मेरी माँ फातिमा है जो शबे आशूर से करबला के मैदान में अपने बालों से ज़मीन को साफ कर रही थी कि कहीं मेरे हुसैन को पत्थर ना चुभ जाए। मौला खुश रखे, मौला तुमको खुश रखे, बीवी तुम्हारे पुरसे को कबूल करे। हुसैन की ज़िंदगी की आखिरी रात, क़यामत की रात है। आज शबे आशूर जब ये रात गुजरी और सुबह नमुदार हुई तो बीबी ज़ैनब ने कहा भैया आज अजान अली अकबर से दिलवाओ। अजीज़ो हुसैन का जवान बेटे ने कहा अल्लाहु अकबर, बस अल्लाहु अकबर कहना था, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे ने गवाही दी और हुर की किस्मत बदली। लैला ने हाथों को उठा के कहा परवरदिगार ये मेरे बेटे की आवाज़ को हमेशा कायम रखना। जंग का आगाज़ हुआ, एक एक शहीद हुआ, हुसैन के सारे अंसार शहीद हो गए, उसके बाद वो लम्हा आया कि कासिम का लाशा घोड़ों से पामाल हो गया। कितनी आसानी से मैंने बात बोल दी, हसन का यतीम शहीद हो गया। फिर वो वक्त आया कि जैनब के दोनों बच्चे ओनो मोहम्मद ख़त्म हो गए, जैनब का घर उजड़ गया। उसके बाद वो मंजिल आई के सैदानियों के पर्दे का मुहाफिज अब्बास के दोनों शाने कता हो गए। जैनब सर पीटने लगी कि हाय पर्दे का मुहाफिज चला गया। उसके बाद वो लम्हा आया कि हुसैन के जवान बेटे ने पुकार के कहा कि बाबा मेरा आखिरी सलाम। हुसैन जब अली अकबर तक पहुंचे तो घुटनियों के बल पहुंचे, जाके कहते थे वलदी जवाब दो, हुसैन आया बेटा। अली अकबर का जवाब नहीं मिला तो शाने को हिला के कहा अली अकबर बाबा आया। फिर जवाब नहीं मिला तो पहलू में लेट गए, फिर सीने जानू पे सर रखा, अली अकबर के सीने से बर्छी निकाली। अजीजों मैंने कितनी आसानी से पूरी शहादत पढ़ दी। आप जरा सोचो जब अली अकबर को लेके खैमे की तरफ चले, हर थोड़ी दूर जाते बेटे की सूरत देखते, खैमे से कुछ फासले पर हुसैन ने अली अकबर के चेहरे को देखा और कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब हुसैन से जवान की मैयत नहीं उठी, अबा को बिछाया और कहा अली अकबर के जनाजे को खैमे तक लेके जाओ। इतना गरीब हो गया था हुसैन कि छोटे छोटे बच्चों ने आके अली अकबर की मैयत। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसलिए मसाइब पढ़ रहा है कि आज की रात का हक अदा हो। आज तुम ऐसा फुर्सा देना रिजवी कॉलेज में कि बीबी जहरा तुमको दुआ दे, इमाम जमाना तुमको दुआ दे। आपको अंदाजा है कि हो सकता इस मजमे कहीं मजमे में कहीं इमाम जमाना बैठा हुआ हो, कहीं हुसैन बैठे हुए हो, कहीं फातिमा बैठ के अपने बच्चे का बुरसा ले रही। बस दोस्तों उसके बाद वो लम्हा आया कि हुसैन ने अली असगर के लिए आवाज़ इस्तेखासा बुलंद किया। और जब अली असगर को ले कर हुसैन वापस आ रहे थे खैमे की तरफ, जब अली असगर को ज़िबा कर दिया गया तो रास्ते में एक शख्स ने आके हुसैन को सलाम किया। खयाम हुसैनी से पहले हुसैन जब अली असगर को लेके आ रहे थे तो एक शख्स ने आके हुसैन को सलाम किया। आशूरे का दिन मेरा मौला इतना गरीब हो गया था कि कोई सलाम करने वाला नहीं था। उसने सलाम किया और सलाम करके कहा कि क्या आप हुसैन हैं? हुसैन ने कहा मैं हुसैन हूं, लेकिन तू कौन है? उसने कहा मौला मैं मदीने से आया हूं, आपकी बेटी फातिमा सोगरा का खत लेकर आया। अजीजो हुसैन ने सोगरा का खत लिया, उसमें सोगरा ने लिखा बाबा आपको सलाम, अम्मा को सलाम, फूफियों को सलाम, चचा को सलाम, आखिर में लिखा बाबा मेरी तरफ से मेरे भाई अली असगर को प्यार करो। अली असगर की मैयत हुसैन के हाथों पर है। हुसैन तड़प गए, कहने लगे अली असगर सोगरा तुम्हें पूछ रही है बेटा, बाबा क्या जवाब दे? मौला आबाद रखे, मौला खुश रखे, इसी तरह बुरसा दो, इसी तरह बुरसा दो। हुसैन खैमे में आए, रबाब को सूरत बताई, रबाब तड़प गई, माँ तड़प गई देख कर के, हाय क्या वक्त आ गया। चीख मार के कहा अली असगर क्या तुम्हारे उतने बच्चे भी ज़िबा किए जाते बेटा? हुसैन ने अली असगर को सुपुर्द-ए-खाक किया। सुपुर्द-ए-खाक करके बस दोस्तों में आखिरी मंजिल पर आ गया। उसके बाद हुसैन खैमे की पुस से आए और आकर कहा जैनब और उम्मे कुलसूम तुम पर मेरा आखिरी सलाम। अजीजों ये सलाम सुना जैनब जमीन पे बैठ गई कि हाय मेरा भैया का आखिरी सलाम। मौला आबाद रखे, मौला तुमको खुश रखे, मौला बीबी तुमको खुश रखे, इसी तरह बुरसा दो। उसके बाद हुसैन ने कहा रबाब और लैला हुसैन का आखिरी सलाम, फिर कहा उम्मे फरवा हुसैन का आखिरी सलाम, फिर कहा है मेरे सीने पे सोने वाली सकीना बाबा का आखिरी सलाम, फिर कहा है मेरी माँ की कनीज फिजा तुझ पर भी हुसैन का सलाम। उसके बाद इमाम ने कहा बहन जैनब मुझे बेटे के पास लेकर चलो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास इमाम आए और आने के बाद देखा कि इमाम गश में है, गस्से फाका हुआ। चौथा इमाम कहता कि मैं बाबा के जिस पे इतने जख्म थे कि मैंने बाबा को पहचाना नहीं। इमाम ने
इतनी आसानी से मैं ये जुमला बोल रहा, इमाम बोल रहा कि इतना जख्मी हो गया था मेरा बाबा कि मैंने बाप को पहचाना नहीं। मेरे बाबा ने कहा कि बेटा सब खत्म हो गए सिवाय तुम्हारे और मेरे, कोई जिंदा नहीं है। तो चौथे इमाम ने कहा बाबा मेरा चचा अब्बास क्या हुआ? तो कहा वो भी नहर पे आराम कर रहे। एक एक की शहादत सुनाई। उसके बाद इमाम ने कहा मेरे लाल, मेरे लाल जब कैद से छूट के वतन जाना तो मेरे शियों को मेरा सलाम करना। अरे कितना करीम है मेरा मौला हुसैन, उस सलाम का जवाब दो, सलाम अल हुसैन वाला अली अब्नल हुसैन वाला औलाद अल हुसैन वाला साबुल हुसैन। हुसैन ने कहा मेरे लाल मेरे शियों को मेरा सलाम करना और उनसे कहना जब ठंडा पानी पीना मेरी प्यास को याद करना, जब भी किसी सबील पे जाके पानी पियो, जब भी कल पानी पीना कहना सलवात बर हुसैन लानत बर यजीद अजीजो। उसके बाद इमाम ने कहा बेटा उनसे कहना जब किसी गरीब का जिक्र सुनना तो मेरी गुर्बत को याद करना। ये दो वसीयतों के बाद अब वसीयत सुनो हुसैन ने क्या कहा। कहा मेरे लाल मेरे बेटे मेरे शियों से कहो हुसैन ने बहुत याद किया तुमको उस वक्त जब अली असगर के लिए पानी मांग रहा था। अरे काश मेरे शिया होते देखते तुम्हारा हुसैन कितना गरीब हो गया कि पानी मांगने पर मेरे बच्चे को ज़िबा कर दिया। मौलाबाद रखे मौलाबाद रखे। उसके बाद हुसैन बहन के खेमे में आए, शहजादी जैनब के खेमे में आए। आके बहन ने भाई को सामने बिठाया, भाई और बहन ने गुफ्तगू की। गुफ्तगू के बाद दौरान गुफ्तगू जैनब ने कहा भैया जरा गले पे से रुमाल को हटाओ। हुसैन ने रुमाल हटाई, रुमाल हटाई तो हुसैन का गुल्लू है हुसैन नुमाया हुआ। जैनब ने यहाँ पे बोसा दिया, प्यार किया, प्यार करके कहा भैया ये अम्मा फातिमा की वसीयत थी कि जब मेरा हुसैन आए मेरी तरफ से हुसैन के गले को प्यार करो। अब हुसैन को कुछ याद आया, कहा बहन बाजू से रिदा को हटाओ, 21 रमजान को बाबा ने वसीयत की थी कि मेरी तरफ से मेरी बेटी जैनब के बाजुओं को बोसा देना। भाई और बहन की रुख्सत हुई, हुसैन ने एक एक बीवी को खुदा हाफिज कहा। उसके बाद खैमे से बाहर निकले, जैनब और उम्मे कुलसुम से वसीयतें करके मेरा मौला बाहर आया। अजीज़ो करबला में इतना गरीब हुसैन आए तो कभी सीधी जानिब देखा कभी बाई जानिब देखा और कहा आईना आईना हबीब आईना आईना मुस्लिम, अरे कहां चले गए? कोई घोड़ा लाने वाला नहीं था, कोई सुलझना लाने वाला नहीं था। हुसैन की गुर्बत मेराज पे गई। हुसैन ने देखा कि जैनब जुलजना लेकर आई और आके कहा भैया आखिरी सवारी जैनब सवार करेगी। भाई का बाजू थामा, हुसैन को जुलजना पे सवार कर दिया। अजीजो अब हुसैन चलना चाहते हैं, जुलजना आगे नहीं बढ़ता। हुसैन ने बड़ी मोहब्बत से जुलजना के सर पे हाथ फेर के कहा जुलजना मैं जानता हूं तू बहुत थका हुआ है, सुबह से मेरे साथ लाशें उठा रहा, तू भी भूखा और प्यासा है, अरे तू मुझे मख्तल तक पहुंचा दे, तुझे मुझे मख्तल तक पहुंचा दे। जब ये कहा तो जुलजना रोने लगा, जानवर है आंखों में आंसू गिरने लगे और अपने पैरों की तरफ इशारा करके कहा मौला मैं आगे कैसे बढ़ूं, देखो मेरे पैरों की तरफ। अब जो हुसैन ने देखा सीने पे सोने वाली सकीना जुलजना के पैरों से लिपटी थी और कह रही थी जुलजना मेरे बाबा को मख्तल में लेके ना जा। अजीजो सकीना इतनी प्यासी थी कि आवाज नहीं निकल रही थी इसलिए जुलजना से लिपट गई। हुसैन घोड़े से जमीन पर आए और जमीन पे आगे पूछा बेटी क्या चाहती हो? कहा बाबा एक दफा मुझे सीने पे सुला लो। हुसैन जलती हुई रेत पे लेट गए, सकीना को सीने पे सुलाया। कुछ देर के बाद बच्ची की आंख बंद हुई, बच्ची ने आंखें खोल के कहा बाबा खुदा हाफिज। हुसैन ने कहा बेटी रोक रही थी अब जाने को कह रही, कहा बाबा जैसी आंख बंद हुई दादी फातिमा आ गई, कहा बेटी हुसैन को जाने दो। अजीजो हुसैन मैदान में आए, जंग की रुदाद ये है, कभी अली अकबर को पुकारा कभी खासिम को पुकारा और लड़ते लड़ते रिकाबों में जोर देके नहर की तरफ दे देकर कहा, अब्बास भैया उठो प्यासे की जंग देखो। फिर कहा, अब्बास तुमको जंग करने की बड़ी ख्वाहिश थी ना, ये हमला हुसैन तुम्हारी तरफ से कर रहा। अब्बास जंग लड़ते रहे, हर तरफ से नारे निकलने लगे। अजीजों उसके बाद हुसैन ने तलवार को नियाम किया। अब कोई तीर मार रहा था, कोई नैजा मार रहा था, कोई तलवार मार रहा था। अरे जिसके पास कुछ नहीं था, उनकी झोलियों में पत्थर थे, वो हुसैन को मार रहे थे। हुसैन घोड़े पे झूम रहे थे और मुल्ला ने तीर मारा। हुसैन ने पुकार के कहा, अम्मा मेरी मदद को आओ। फातिमा की आवाज गूंजी, हुसैन घोड़े से जमीन पर आए, सजदे के लिए झुके, शिमर खंजर लेकर आगे बढ़ा। हुसैन के गले पे खंजर चलने लगा। ज़ैनब फरियाद कर रही थी, यबना साथ मेरा भाई बेकसूर है। इसे जाता